औचित्य संप्रदाय और उसके सिद्धांत। ईसा की 11वीं शताब्दी से के आरंभ तक भारतीय काव्यशास्त्र के क्षेत्र में पांच प्रमुख संप्रदाय रस, अलंकार, रीत, ध्वनि और वक्रोक्ति प्रतिष्ठित हो चुके थे, किंतु फिर भी काव्य के आधारभूत तत्व के संबंध में कोई एक सर्वमान्य निर्णय नहीं हो सका। इतना ही नहीं, अनेक संप्रदायों की स्थापना के कारण काव्य की आत्मा संबंधी विवाद सुलझने के स्थान पर और अधिक उलझ गया था। रस, अलंकार, रीति आदि प्रत्येक संप्रदाय अपने अपने मत को प्रमुखता देते थे तथा दूसरे के मत को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते थे। ऐसी स्थिति में काव्य के सामान्य अध्येता के सामने यह समस्या थी कि वह किस मत को माने और किसको नहीं। ठीक इसी समय आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य की स्थापना करके इस विवाद को सुलझाने में गहरा योग दिया। उन्होंने कहा कि काव्य में रस, गुण, अलंकार आदि सभी का महत्व है, किंतु उसी अवस्था में जबकि ये सब औचित्य से समन्वित हों। औचित्य के अभाव में ये सभी तत्व व्यर्थ हैं। इस प्रकार औचित्य संप्रदाय इन सब के उचित समन्वय का संदेश लेकर उपस्थित हुआ। औचित्य की पूर्व परंपरा। यद्यपि औचित्य की एक पृथक संप्रदाय के रूप में स्थापना करने का श्रेय आचार्य क्षेमेंद्र को ही है, किंतु उनसे पूर्व भी अनेक आचार्य इसकी चर्चा सामान्य रूप से कर चुके थे। भरत के नाट्यशास्त्र में औचित्य का आधार लोक की रुचि, प्रवृत्ति एवं उसके रूप को मानते हुए लिखा है, जो लोक सिद्ध है वह सब अर्थों में सिद्ध है, और नाट्य का जन्म लोक स्वभाव से हुआ है, अतः नाट्य प्रयोग में लोक ही प्रमाण है। आगे चलकर उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि जैसा पात्र हो उसी के अनुरूप उसकी भाषा, वेश, चरित्र आदि होने चाहिए। वयो अनुरूप प्रथमस्तु वेश, वेशानुरूपश्च गति प्रचार, गति प्रचारानुगतम च पाठ्यम, पाठ्यानुरूपी रूपोभिनयश्च कार्य। अर्थात वय के अनुरूप वेश होना चाहिए, वेश के अनुरूप गति, गति के अनुरूप पाठ्य तथा पाठ्य के अनुरूप अभिनय होना चाहिए। इस प्रकार आचार्य भरत ने स्वाभाविकता के रूप में औचित्य का प्रतिपादन किया है। इतना अवश्य है कि उन्होंने औचित्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। आगे चलकर दंडी ने भी यह संकेत किया कि काव्य में औचित्य का स्थान है। उपमा के प्रसंग में उन्होंने बताया कि यदि सहृदयों को उद्वेग न हो तो उपमान और उपमेय के लिंग, वचन आदि में परस्पर भेद होना भी कोई दोष नहीं है। वस्तुतः भाम, दंडी, वामन, रुद्रट आदि का दोष विवेचन एक प्रकार से औचित्य के अभाव या अनौचित्य की ही व्याख्या है, किंतु औचित्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने वाले आचार्यों में सर्वप्रथम आनंदवर्धन आते हैं। उन्होंने औचित्य शब्द का प्रयोग करते हुए उसके छह प्रकार निश्चित किए हैं। एक, रसौचित्य, दो, अलंकार औचित्य, तीन, गुणौचित्य, चार, संगठन औचित्य, पाँच, प्रबंध औचित्य, छह, रीति औचित्य। इनमें से प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है। एक, रसौचित्य। इसका संबंध रस से है। काव्य में रस का उचित रूप से प्रतिपादन तब ही संभव है जबकि उसमें रसौचित्य हो। रसौचित्य के लिए आनंदवर्धन ने मुख्यतः 10 नियम निर्धारित किए हैं। क, शब्द और उसके अर्थ का नियोजन औचित्यपूर्ण हो। ख, व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग शुद्ध हो। ग, प्रबंध काव्य में संधि, घटना आदि का प्रयोग रसानुकूल हो। घ, विरोधी रस के अंगों का वर्णन न हो। अंग, गौण वस्तु, घटना, पात्र तथा वातावरण का इतना विस्तार न हो कि उससे मुख्य रस ही दब जाए। च, अंगरस और अंगी रस का संबंध आपस में ठीक अनुपात में हो। छ, अन्य रसों की नियोजना में पारस्परिक अनुकूलता हो। ज, प्रबंध काव्य या नाटक में रस का प्रयोग उचित अवसर पर हो। झ, विभाव, अनुभाव, संचारी आदि के वर्णन में औचित्य की रक्षा की जाए। हमारे विचार से इनमें से कुछ भेद तो अनावश्यक हैं। चौथे भेद घ में जो बात कही गई है लगभग उसी को अगले तीन भेदों अंग च छ में दोहराया गया है। इसी प्रकार के अन्य भेदों में से भी अनेक को निकाला जा सकता है। रसौचित्य के संबंध में संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि काव्य में रस के विभिन्न अवयवों तथा विरोधी रसों का समन्वय उचित रूप से होना चाहिए, तभी इसके रस निष्पत्ति हो सकेगी। पाँच, अलंकार औचित्य। इसके ही पाँच भेद बताए गए हैं। क, अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप में हो। ख, अलंकार लाने के लिए कवि को प्रयत्न न करना चाहिए। ग, अलंकार भावों की पुष्टि में योग देने वाले होने चाहिए। घ, उनका स्थान काव्य में गौण होना चाहिए, मुख्य नहीं। अंग, यमक, श्लेष आदि शब्द अलंकार कोरे चमत्कार के लिए प्रयुक्त न हो। तीन, गुणौचित्य। काव्य में विभिन्न गुणों का समन्वय रस के अनुकूल होना चाहिए, जैसे ओज का वीर रस में, माधुर्य का श्रृंगार और करुण में। चार, संघटनौचित्य। संघटना या रचना का उद्देश्य रस है, अतः उसमें विभिन्न तत्वों का नियोजन रस के अनुकूल होना चाहिए। इसके ही विचार नियामक हैं। क संघटना रसानुकूल हो, ख पात्र की प्रकृति स्थिति तथा मानसिक दशा के अनुसार इसकी योजना हो, ग प्रतिपाद्य विषय के अनुकूल हो, घ काव्य की प्रकृति के अनुकूल हो। 5 प्रबंधौचित्य, प्रबंधगत औचित्य के लिए आनंदवर्धन ने निम्नांकित नियम निर्धारित किए हैं। क प्रसिद्ध तथा कल्पित वृत्तों में समानुपात रहना चाहिए। ख वर्ण वस्तु का प्रयोग प्रकृति रस के विपरीत नहीं होना चाहिए। ग जो घटनाएं काव्य के मुख्य ध्येय में बाधक सिद्ध होती हों उन्हें परिवर्तित कर देना चाहिए। घ प्रासंगिक घटनाओं का विस्तार अंगी रस की दृष्टि से करना चाहिए। अंग वर्णन विषय से दूर न जाना चाहिए। च अंग घटना का विस्तार इतना न किया जाए कि वह अंगी बन जाए। छ प्रकृत रस के अनुकूल ही घटनाओं का चयन होना चाहिए। ज पात्रों की प्रकृति परिवर्तित न करनी चाहिए। छ रीति औचित्य, रीति का प्रयोग भी उचित रूप से यानी वक्ता रस अलंकार तथा काव्य के स्वरूप के अनुकूल करना चाहिए। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आनंदवर्धन ने औचित्य का प्रतिपादन पर्याप्त विस्तार से किया था। उनके अनंतर कुंतक एवं महिम भट्ट ने भी इसका उल्लेख अत्यंत संक्षेप में अपने ग्रंथों में किया। कुंतक ने इसकी परिभाषा करते हुए लिखा, जिसके द्वारा स्वभाव का महत्व पुष्ट होता हो अथवा जहाँ वक्ता या श्रोता के अति स्वाभाविक सौंदर्य के कारण वाच्य वस्तु आच्छादित हो जाती हो वह औचित्य है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु के स्वाभाविक सौंदर्य का वर्णन ही औचित्य है। महिम भट्ट ने अपने व्यक्ति विवेक में औचित्य के दो भेद माने हैं, शब्दौचित्य और अर्थौचित्य। इस प्रकार औचित्य की परंपरा चली आ रही थी कि क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार लिखकर उसे काव्य का प्राण घोषित किया और साथ ही उसे अत्यंत व्यापक रूप प्रदान किया। औचित्य का लक्षण, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य का लक्षण निर्धारित करते हुए कहा, जो उसके योग्य है आचार्य लोग उसे उचित कहते हैं, उसका भाव औचित्य है। इसे और स्पष्ट करते हुए डॉक्टर मनोहर गौड़ ने लिखा है, उद्धरण चिन्ह, काव्य में भी संयोजन क्रिया की प्रमुखता रहती है, कल्पना का यही कार्य है। जीवन में अनेकत्र अनेकदा दृष्ट एवं अनुभूत पदार्थों का किसी भाव या कथा के सहारे सामंजस्य संयोजन किया जाता है। इस सामंजस्य को सादृश्य अथवा संतुलन को ही औचित्य कहा जाता है। यह सापेक्ष वस्तु है। नीम का चारा गौ के लिए असदृश और ऊँट के लिए सदृश है। यदि भूषणों का प्रयोग ग्रामीण स्त्री के लिए उचित एवं नागरिक के लिए अनुचित है, इस प्रकार औचित्य एक विधेयात्मक तत्व सिद्ध होता है। यही समस्त सौंदर्य का मूल है। उद्धरण चिन्ह बंद। हमारे विचार से औचित्य को आधुनिक शब्दावली में स्वाभाविकता कहना अधिक उचित होगा। काव्य में घटनाओं और पात्रों के आयोजन में स्वाभाविकता होने पर ही वह प्रेषणीय हो पाता है। अस्तु, स्वाभाविकता ही औचित्य है। औचित्य के अंग, आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्मात सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के 28 अंग या भेद निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार हैं। 1 पद, 2 वाक्य, 3 प्रबंधार्थ, 4 गुण, 5 अलंकार, 6 रस, 7 क्रिया, 8 कारक, 9 लिंग, 10 वचन, 11 विशेषण, 12 उपसर्ग, 13 निपात, 14 काल, 15 देश, 16 कुल, 17 व्रत, 18 तत्व, 19 सत्व, 20 अभिप्राय, 21 स्वभाव, 22 सार संग्रह, 23 प्रतिभा, 24 अवस्था, 25 विचार, 26 नाम, 27 आशीर्वाद और 28 काव्य के अनविविध अंग। इन 28 तत्वों को सुगमता की दृष्टि से निम्नांकित 4 विभागों में विभक्त किया जा सकता है। क शब्द, पद, वाक्य, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात। ख काव्य शास्त्रीय तत्व, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, सार संग्रह, तत्व, आशीर्वाद, काव्य के अन्य अंग। ग चरित्र संबंधी, व्रत, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, प्रतिभा, विचार, नाम। घ परिस्थिति संबंधी, काल, देश, कुल, अवस्था। उपर्युक्त अंगों के पर्यालोचन से पता चलता है कि आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य की विषय वस्तु और उनकी शैली दोनों में ही औचित्य का विधान किया है। औचित्य अनौचित्य के कुछ उदाहरण, आचार्य क्षेमेंद्र के दृष्टिकोण को सम्यक रूप से समझने के लिए हम यहाँ उनके द्वारा विवेचित औचित्य के कुछ उदाहरणों का अवलोकन कर सकते हैं। पद औचित्य की विवेचन करते हुए वे लिखते हैं, सूक्ति में किसी विशेष पद का उचित प्रयोग इस प्रकार शोभाकारक होता है जैसे चंद्रमुख युवती के मस्तक पर कस्तूरी तथा श्यामा के मस्तक पर चंदन का तिलक। जैसे हे देव, युद्ध के समय तुम्हारी इस खड्ग धारा में शत्रुओं के कुल डूब गए। इस प्रकार की प्रशंसा बहुशः बंदियों ने सुनकर भोली गुर्जर नरेश की पत्नी जंगल में चकित होकर जल की आशा से पति के कृपाण की ओर देखती है। यहाँ भोली शब्द से अर्थ के औचित्य का चमत्कार उत्पन्न होता है। इसके विपरीत किसी अनुचित शब्द के प्रयोग से जिस प्रकार काव्य सौंदर्य को ठेस पहुँचती है उसका स्पष्टीकरण करते हुए एक उदाहरण दिया गया है। सौंदर्य रूपी धन के व्यय का कुछ सोच नहीं किया, महान क्लेश उठाया, स्वच्छंद और सुख से रहने वाले लोगों को चिंता के ज्वर से पीड़ित किया। यह बेचारी भी योग्य पति के अभाव में दुखी है। विधाता ने इस तन्वी को जन्म देने में क्या प्रयोजन सोचा था। इसकी विवेचना करते हुए आचार्य क्षेमेंद्र लिखते हैं कि यहाँ तन्वी शब्द केवल अनुप्रास लोभ से प्रयुक्त हुआ है, वह किसी प्रकार के अर्थौचित्य के चमत्कार को प्रकट नहीं करता। उनके विचार से यहाँ सुंदरी शब्द का प्रयोग उचित था। अलंकार औचित्य के संबंध में आचार्यवर ने स्पष्ट किया है कि प्रतिपाद्य अर्थ के अनुरूप ही अलंकार का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अपना उत्सव देखने के लिए उत्सुक होकर वत्सराज कामदेव की भांति इधर ही आ रहे हैं। लड़ाई की चर्चा समाप्त हो चुकी है, अतः वे प्रेमी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवासित साक्षात कामदेव के समान लगते हैं। यहाँ वत्सराज की कामदेव से उपमा श्रृंगार रस में के प्रसंग में बड़ी चारुता उत्पन्न करती है, अतः यह औचित्य चमत्कार का कारण बनता है। इस प्रकार और रसौचित्य की व्याख्या करते हुए अनेक महत्वपूर्ण बातें कही गई है। उद्धरण चिन्ह, औचित्य के द्वारा रस और अधिक आस्वादनीय बनकर सब हृदयों में व्याप्त हो जाता है। मधुमास जैसे अशोक को अंकुरित कर देता है, उसी प्रकार यह भी भावुक हृदयों को अंकुरित कर देता है। मधुर तिक्त आदि रसों को चतुराई से मिलाने पर जिस प्रकार एक विचित्र आस्वाद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार श्रृंगार आदि रसों को परस्पर समन्वित करने पर एक विलक्षण रसानुभूति होती है। उद्धरण चिन्ह बंद। अस्तु, क्षेमेंद्र ने औचित्य का प्रतिपादन सर्वत्र काव्य सौंदर्य के अभिवृद्धि के लक्ष्य से ही किया है। अलंकार गुण रस आदि का ऐसा आयोजन तो काव्यत्व के विरुद्ध पड़ता है, उनके द्वारा निषिद्ध घोषित किया गया है। क्षेमेंद्र परवर्ती आचार्य। क्षेमेंद्र परवर्ती आचार्यों में से कुछ ने औचित्य की चर्चा तो की है, किंतु उन्होंने उसे काव्य का प्राण तत्व स्वीकार नहीं किया। मम्मट ने कहा है कि औचित्य के कारण गुण भी दोष या दोष भी गुण बन सकता है, अतः उसके आधार पर गुण दोषों की ही परीक्षा की जा सकती है, इससे अधिक उसका महत्व नहीं है। आचार्य हेमचंद्र ने अपने काव्यानुशासन में औचित्य की चर्चा गौण रूप से की है। उन्होंने यह बताया है कि पूर्व कवियों का अनुकरण कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित। आगे चलकर साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ एवं पंडित राज जगन्नाथ ने भी इसे गुण दोषों तक ही सीमित रखा। हाँ, आधुनिक युग के कतिपय आचार्यों ने अवश्य इसकी प्रशंसा की है। साहित्याचार्य बलदेव उपाध्याय ने इसके संबंध में लिखा, सच्ची बात तो यह है कि औचित्य भारतीय अलंकारिकों की संसार की आलोचना शास्त्र को महती देन है। जितना प्राचीन तथा सांगोपांग विवेचन इसका भारत में हुआ है, उतना अन्यत्र नहीं। यह हमारे साहित्य के महत्व का पर्याप्त परिपोषक है। उद्धरण चिन्ह बंद। इस संबंध में हम अपना मत लेख का उपसंहार करते समय व्यक्त करेंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र और औचित्य। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के क्षेत्र में औचित्य पर पर्याप्त विचार हुआ है। प्रसिद्ध यवनाचार्य अरस्तु ने अपने पोएटिक्स में चार प्रकार के औचित्य की मीमांसा की है। एक घटनौचित्य, दो रूपकौचित्य, तीन विशेषणौचित्य, चार विषयौचित्य। घटनौचित्य के संबंध में उनका विचार है कि साहित्य में वर्णित घटना जगत से संबद्ध और स्वाभाविक होनी चाहिए। दूसरे, प्रासंगिक घटना मुख्य घटना से उचित रूप से संबंधित होनी चाहिए। रूपकौचित्य के संबंध में उनका मत है कि गद्य को प्रभावशाली एवं सुंदर बनाने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। रूपक प्रयोग में इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि वस्तु का उत्कृष्ट दिखाने के लिए उत्कृष्ट गुणों से युक्त विशेषण प्रयुक्त करने चाहिए तथा अपकर्ष दिखाने के लिए हीन गुणों वाले विशेषण। साथ ही उपमान और उपमेय में जाति गुण धर्म आदि का भी साम्य अपेक्षित है। विशेषणौचित्य में विशेषण का लक्ष्य वर्ण विषय के भावार्थ को पुष्ट करना होता है। विशेषौचित्य के लिए भावानुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाव यदि उदात्त हैं तो भाषा क्षुद्र या अशक्त नहीं होनी चाहिए। अरस्तु ने अपने दूसरे ग्रंथ रेटारिक्स में भी औचित्य प्रोप्रिएटी की विशद रूप में विवेचना की है। इसमें शैली संबंधी विभिन्न गुणों एवं तत्वों के औचित्य पर प्रकाश डाला है। लॉन्जाइनस 213 से 273 ईस्वी ने अपने उदात्त तत्व संबंधी ग्रंथ ऑन द सबलाइम में दो प्रकार के औचित्य, अलंकारौचित्य एवं शब्दौचित्य की विवेचना की है। उन्होंने स्पष्ट रूप में स्वीकार किया है कि अलंकारों एवं शब्दों के उचित प्रयोग से ही काव्य के प्राण तत्व उदात्त तत्व की सिद्धि होती है। आगे चलकर एक अन्य पाश्चात्य आचार्य होरेस ने अपने काव्य कला संबंधी प्रबंध में कवियों के लिए तीन उपदेश दिए हैं। जिनमें एक काव्य में औचित्य का सदा ध्यान रखना चाहिए। इसका अधिक स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने बताया है कि यदि ऐतिहासिक कथा को लेकर काव्य रचना की जाए तो उसके पात्रों का स्वभाव परंपरा के अनुसार ही दिखाना उचित है। इसके अतिरिक्त अभिनय आदि में भावानुरूपता एवं स्वाभाविकता का ध्यान रखा जाना चाहिए। शब्दों के औचित्य के संबंध में उनकी सम्मति है कि जिस प्रकार विषय हो उसी के अनुकूल छंद का चुनाव करना चाहिए। आगे चलकर उद्धरण चिन्ह, यूरोप के क्लासिकल युग में औचित्य की पूरी पूरी मान्यता रहे। इसी मारे के अनुयायी कवि तथा आलोचकों की दृष्टि में कला के क्षेत्र में अनुशासन की मान्यता वर्तमान थी। शास्त्र तथा लोक दोनों का ही अनुशासन कला में उन्होंने माना था। लोक का अनुशासन औचित्य ही है। क्षेमेंद्र ने काव्य समीक्षा के प्रेरणा तत्व जिस प्रकार जीवन से लिए थे उसी प्रकार क्लासिकल समीक्षकों ने भी काव्यलोचन का आदर्श लोक को माना है। लोक के उदात्त शिष्य रूप को आदर्श बताया है। यही औचित्य की मूल भावना है। उद्धरण चिन्ह बंद। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़। 18वीं शती के महाकवि पोप ने भी औचित्य पर बड़ा बल दिया है। उन्होंने अपनी समीक्षा संबंधी पद्यात्मक लेख में भावानुकूल वर्ण योजना पर विचार करते हुए लिखा है, इट इज नॉट इनफ नो हार्शनेस गिव्स ऑफेंस, द साउंड मस्ट सीम ऑन इको ऑफ सेंस, सॉफ्ट इज द स्ट्रेन व्हेन जेफर जेंटली ब्लोज, एंड द स्मूथ स्ट्रीम इज स्मूथर नंबर फ्लोज, बट व्हेन लॉर्ड सर्ज लास्ट द साउंडिंग शोर, द हॉर्से रफ वर्स शुड लाइक अ टॉरेंट रोअर। अर्थात कविता में केवल उद्वेगकारी कर्णकटुता का भाव ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता, प्रत्युत वर्ण भाव की प्रतिध्वनि के रूप में होना चाहिए। मलयानील के बहने के अवसर पर प्रयुक्त शब्दों में सुकुमारता तथा कोमलता होनी चाहिए। मंद मंद प्रवाही निर्झर को ही सुकोमल पदों में प्रवाहित होना चाहिए, किंतु जब प्रचंड झंझावात का थपेड़ा खाकर भीषण उर्मिया किनारों से टकराती है तब वजस्वी पद भी तुमुल प्रवाह की भांति घोर गंभीर गर्जना करता है। कहना न होगा कि पोप का यह निर्देश भारतीय आचार्यों के पदौचित्य एवं गुणौचित्य के ही अनुकूल है। वस्तुतः औचित्य को भारतीय एवं पाश्चात्य आचार्यों ने समान रूप से महत्व प्रदान किया है। उपसंहार। अंत में औचित्य संप्रदाय के महत्व के संबंध में हम निजी दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं। जहां तक उसकी उपलब्धियों का संबंध है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि काव्य शास्त्र में औचित्य की प्रतिष्ठा से एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई। एक ओर तो इससे अलंकारियों, रीतिवादियों और वक्रोक्तिवादियों की अति चमत्कारवादी प्रवृत्तियों के नियंत्रण में योग मिला, दूसरी ओर काव्य में स्वाभाविकता को अत्यधिक सम्मान प्राप्त होने लगा। क्षेमेंद्र ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल अलंकार और रीति का प्रयोग काव्य के सौंदर्य के बढ़ाने में सहायता तो देता ही नहीं, अपितु उसे ठेस भी पहुंचा सकता है। यदि हम 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक की संस्कृत रचनाओं को देखें तो पता चलेगा कि इस युग का साहित्य किस प्रकार कृत्रिम अलंकार योजना से आच्छादित होकर सौंदर्य विहीन, शुष्क एवं जटिल हो गया है। औचित्यवाद ने इसका घोर बहिष्कार करके परवर्ती युग की काव्य रचनाओं को, भले ही वे संस्कृत भाषा की न होकर अन्य भाषा की हो, नया दृष्टिकोण प्रदान किया। क्षेमेंद्र का औचित्य स्वाभाविकता संबंधी दृष्टिकोण आधुनिक युग की धारणाओं के भी अनुकूल है। इतना अवश्य है कि जहां आधुनिक युग का साहित्यकार साहित्य को नियमों से सर्वथा मुक्त कर देने में उसकी स्वाभाविकता मानता है, वहां क्षेमेंद्र आवश्यक नियमों का पालन करते हुए यथार्थ चित्रण में स्वाभाविकता मानते हैं। किंतु यह अंतर भी युग के दृष्टिकोण के अनुकूल ही है। उस युग का पाठक या सामाजिक प्राचीन नियमों को श्रद्धा की दृष्टि से देखता था, अतः उनका पालन उस युग के साहित्यकार के लिए अपेक्षित था, जबकि आज का दृष्टिकोण बदल गया है। यहाँ एक बात विचारणीय है कि क्या औचित्य को काव्य का जीवन या प्राण माना जा सकता है? क्या औचित्य अपने आप में इतना समर्थ है कि वह काव्य में सौंदर्य तत्व की प्रतिष्ठा कर सके? इन प्रश्नों का उत्तर हमें निषेधात्मक ही देना पड़ेगा। इसमें संदेह नहीं कि औचित्य से काव्य के मूल सौंदर्य की रक्षा होती है। उसके अभाव में सौंदर्य सौंदर्य नहीं रहता, कुरूपता में परिणत हो सकता है, किंतु यह भी स्पष्ट है कि वह मूल सौंदर्य का स्थानापन्न नहीं बन सकता। औचित्य में अपने आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह काव्य सौंदर्य की सृष्टि कर सके। उदाहरण के लिए विज्ञान, दर्शन एवं इतिहास की पुस्तकें भी औचित्य से युक्त होती हैं। भाषा, शैली एवं विचार आदि में से किसी का भी अनौचित्य वहां स्वीकार नहीं होता, किंतु फिर भी उनमें वह सौंदर्य नहीं आ पाता जो कि काव्य में उपलब्ध होता है। यह ठीक है कि कई बार औचित्य या स्वाभाविकता के कारण ही कोई व्यक्ति सुंदर बन जाती है, किंतु यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो वहां भी उसके सौंदर्य के मूल में औचित्य के साथ साथ कोई अन्य तत्व ही मिश्रित होगा। उदाहरण के लिए सूरदास के बाल वर्णन की प्रशंसा में कई बार उसकी स्वाभाविकता की चर्चा की जाती है, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि केवल स्वाभाविक या उचित उक्ति के कारण ही वह सुंदर है। वस्तुतः सूर्य के बाल वर्णन में भावात्मकता का पुट ही सौंदर्य का मूल कारण है। स्वाभाविकता तो उस मूल कारण की एक विशेषता मात्र है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अस्वाभाविक रूप में प्रस्तुत भावव्यंजना काव्य सौंदर्य की दृष्टि में सहायक नहीं होगी, किंतु साथ ही यह भी असंदिग्ध है कि भावना शून्य होने पर एक स्वाभाविक वर्णन भी दंडी द्वारा कथित वार्ता मात्र रह जाएगा। काव्य की संज्ञा उसे नहीं दी जा सकती। अस्तु, कहना चाहिए कि औचित्य वह तत्व है जो कविता कामनी के मुख चंद्र को निखार कर निष्कलंक, अम्लान एवं स्वच्छ तो बनाता है, किंतु उसे ज्योत्सना का नया वैभव प्रदान करना उसके वश की बात नहीं है। प्रयोगवादी शब्दावली में कहें तो अधिक से अधिक लक्ष्य की टिकिया है, सौंदर्य की पुड़िया उसे नहीं कह सकते। या बिहारी के शब्दों में वह चितवनी औरएं कछु जही बस होत सुजान। इस तरह औचित्य संप्रदाय और उसके सिद्धांत शीर्षक यह निबंध यहीं पर समाप्त होता है।